नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य सभी भक्तों का हम स्वागत करना चाहेंगे आज के इस रविवार के कार्यक्रम में, और विशेष रूप से जो आज सुबह से हम प्रारंभ किए हैं श्री गौर कथामृत, उसमें भी आज सुबह हमने भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, ये जो युग अवतार हैं इस कलयुग के, इनका गुणगान रूप गोस्वामी ने कितने सुंदर तरीके से किया है। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने अपने श्री चैतन्य चरितामृत में केवल श्री गौर लीला के जो सागर हैं उसका केवल उनकी कुछ बूंदें हमें दी हैं, और ये सारी जो चैतन्य लीला है ये केवल कुछ बूंदें हैं चैतन्य लीला के सागर की। और हमने सुबह चर्चा की कि उन बूंदों में से हम केवल कुछ छींटें ये 7 दिन सुनने जाने वाले हैं। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रारंभ करते हैं हर एक अध्याय श्री पंचतत्व का गुणगान करते हुए। तो हम आग्रह करेंगे आप भी मेरे पीछे गाइए, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तो आज सुबह हमने सुना भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के पश्चात जब जगन्नाथपुरी आते हैं और वहां पर सार्वभौम भट्टाचार्य को एक मायावादी से वैष्णव बनाते हैं, उसके पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु निश्चित करते हैं दक्षिण यात्रा के विषय में। और महाप्रभु सभी भक्तों को बुलाते हैं अपने पार्षदों को, और अपने पार्षदों को कहकर ये संकेत दे रहे हैं कि उनका प्रयोजन क्या है दक्षिण क्षेत्र में जाने का, दक्षिण भारत में जाने का प्रयोजन क्या है। विश्वरूपे सिद्धि प्राप्ति जाने न सकल, दक्षिण देशे उद्धारिते करे न ए छल, कि वो एक प्रकार से छल कर रहे थे दक्षिण क्षेत्र में जाने का एक बहाना, विश्वरूप को ढूंढने का एक बहाना। और सारे जो पार्षद हैं, जब उन्होंने यह सुना कि हमारे जो प्राण धन हैं श्री चैतन्य महाप्रभु, एक तो पहले ही इन्होंने सन्यास ले लिया है, और एक जो सन्यासी का धर्म होता है, जो विचरण करता रहता है भगवत संदेश को बांटने के लिए, तो उन्हें डर था कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास लिया है इस उद्देश्य को देखते हुए, और अब श्री चैतन्य महाप्रभु वो अपने मुखारविंद से कह भी रहे हैं। परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु जो नम्रता की मूर्तिमान स्वरूप हैं, वो आज्ञा ले रहे हैं, अपने ही भक्तों से आज्ञा ले रहे हैं कि आप लोग आज्ञा दीजिए ताकि मैं ये जो मेरा प्रयोजन है इसे मैं पूरा कर पाऊं। तो जैसे ही सारे चैतन्य महाप्रभु के पार्षद ये सुनते हैं चैतन्य महाप्रभु के मुख से कि उन्हें आज्ञा चाहिए और वो दक्षिण भारत जाना चाहते हैं, तो तुरंत जो सबसे वरिष्ठ हैं नित्यानंद प्रभु, वो बोलना शुरू करते हैं। और वो कहते हैं कि ये कैसे संभव है, ये कैसे संभव है। और चैतन्य महाप्रभु ने केवल ये नहीं कहा कि मैं दक्षिण भारत जाना चाहता हूं, चैतन्य महाप्रभु ये भी कहे कि मैं अकेले जाना चाहता हूं। तो सबसे पहले तो सारे भक्तगण खुश हुए कि दक्षिण भारत की यात्रा होने वाली है इनके साथ। परंतु जब चैतन्य महाप्रभु ने कहा नहीं नहीं मैं अकेले जाना चाहता हूं, तो वो एक वज्रपात के समान था कि वो अकेले जाना चाहते हैं। तो नित्यानंद प्रभु वो अपना आश्चर्य व्यक्त कर कहते हैं कि ये कैसे संभव है, ये कैसे संभव है कि आप अकेले, वो भी दक्षिण भारत जहां पर कोई आपको जानता तक नहीं। तो नित्यानंद प्रभु अब वो प्रारंभ कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु को रोकने के लिए। तो वो सबसे पहला कारण देते हैं कि देखो आप एक सन्यासी हैं, और जो समाज के रीति रिवाज हैं और समाज में किन किन प्रकार के लोग होते हैं इनका आपको भान नहीं है, तो ऐसा होगा कि आप किस जगह पर हो और कोई चोर डकैत आकर सब कुछ चोरी कर ले आपके पास जो भी कुछ होगा। तो ये एक कारण है जिसके वजह से आपको अकेले नहीं जाना चाहिए, आप जाइए, अकेले मत जाइए, हम हैं। और नित्यानंद प्रभु स्वयं आगे आकर कहते हैं कि मैं सारे तीर्थ स्थानों की मैंने यात्रा की है, तो यदि आपको कोई गाइड चाहिए, और अवश्य ही आप पहली दफा जा रहे हैं दक्षिण क्षेत्र में, तो मुझे सब जगह पता है कौन से तीर्थ स्थान कहां पर हैं, तो यदि और कोई नहीं तो मुझे तो लेकर जाइए आप। तो नित्यानंद प्रभु इस प्रकार से सबसे पहले वो एक कारण दे रहे हैं चैतन्य महाप्रभु को अकेले नहीं जाने का, और तत्पश्चात कह रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं कि यदि आप मुझे लेकर जाओ तो मैं आपको ठीक ठीक रास्ता बताऊंगा। तो चैतन्य महाप्रभु वो फिर कहते हैं, प्रभु कहे आमी नर्तक तुमी सूत्रधार, तुमी ऐचे नाचाओ तैचे नर्तन आमार। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि मैं एक कठपुतली के समान हूं, प्रभु कहे आमी नर्तक, एक जो नर्तक होता है जो केवल नृत्य करता है, परंतु हे नित्यानंद प्रभु तुम ही सूत्रधार और तुम हो मेरे सूत्रधार। तो चैतन्य महाप्रभु अब नित्यानंद प्रभु का गुणगान कर रहे हैं कि मैं तो केवल एक कठपुतली के समान हूं और मेरी डोर तुम्हारे हाथ में है। तुम्ही यैचे नचाओ तैचे नर्तन आमार, जैसे तुम नचाना चाहते हो वैसे मैं नृत्य करूंगा, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं। परंतु इसके आगे फिर वो नित्यानंद प्रभु को क्या कहते हैं ये बहुत ही अचरज करने वाली एक बात है। वो नित्यानंद प्रभु को याद दिला रहे हैं कि तुम कह रहे हो कि तुम मुझे रास्ता दिखाओगे। याद है जब मुझे वृंदावन जाना था एक दिन, तो किस प्रकार से एक योजना बनाई थी तुम ही ने कि मैं वृंदावन न जाकर मैं शांतिपुर पहुंच गया। तो चैतन्य महाप्रभु वो कहते हैं, संन्यास करिया आमी चलीलान वृंदावन, तुमी आमाला न आइले अद्वैत भवन। कि संन्यास लेने के पश्चात मैं वृंदावन जाना चाहता था, और क्योंकि मैं अपने भगवान कृष्ण की भावनाओं में था तो मुझे किसी प्रकार से छल कर तुम्ही ने मुझे अद्वैत भवन शांतिपुर भेज दिया। और यहां पर कह रहे हो कि मेरा गाइड बनकर आओगे, गाइड बनकर कि मिस गाइड बनकर। और फिर वो नित्यानंद प्रभु के विषय में कह रहे हैं कि जब मैं जगन्नाथपुरी आ रहा था तो जगन्नाथपुरी के रास्ते में याद है क्या किया था तुमने, मेरा जो दंडा था सन्यास का उसे तीन भाग में तोड़ दिया था और वो जो दंड भंग नादी है उसमें फेंक दिया था। याद है तो मैं अपने सन्यास धर्म का पालन कैसे कर पाऊंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा तो मुझे कभी यहां भेज देते हो कभी दंडा तोड़ देते हो मेरा। और जब मैंने पूछा कि ये दंडा कैसे टूटा, हालांकि नित्यानंद प्रभु वो दंडा इसलिए तोड़े थे क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने दीक्षा शंकर संप्रदाय में ली थी जो कि एक प्रकार का मायावाद संप्रदाय है, और वो इसलिए ली थी क्योंकि उस समय वो बहुत प्रचलित था संप्रदाय, तो प्रचार के लिए बहुत ज्यादा सहायक था उस संप्रदाय में दीक्षा लेना। तो चैतन्य महाप्रभु संन्यास इसीलिए लिए थे उस समय, और इसलिए उनके पास जो मायावादियों का एक दंड होता है वो एक दंड था। तो नित्यानंद प्रभु सबसे पहले जब वो दंडे को देखे तो नित्यानंद प्रभु को क्रोध आया कि सबसे पहले महाप्रभु को दंडे की क्या आवश्यकता है, ये सन्यास का धर्म, ये तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और ऊपर से एक दंड, और ये तो शुद्ध वैष्णव है, एक भक्त के रूप में आए हैं, तो इसलिए जो वैष्णव होते हैं उन्हें कहते हैं त्रिदंडी सन्यासी, तीन दंड होते हैं उनके सन्यास के। तो इसलिए ये सोचते हुए नित्यानंद प्रभु ने वो तीन भाग में वो दंड को तोड़ दिया। और फिर जब चैतन्य महाप्रभु स्नान कर आए और पूछे कि मेरा दंडा कहां है, तो नित्यानंद प्रभु कहे कि आप कृष्ण प्रेम में इतने भाव विभोर थे कि नाचते नाचते आप अपने दंडे पर कूद गए और आप ही ने तोड़ दिया। तो चैतन्य महाप्रभु आंतरिक रूप से बहुत प्रसन्न हुए कि जो नित्यानंद प्रभु ने किया, परंतु बाहरी रूप से वो क्रोध व्यक्त कर रहे थे। तो यहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु वो नित्यानंद प्रभु को याद दिला रहे हैं कि किस प्रकार से तुम तो योग्य नहीं बिल्कुल मेरे साथ आने की, क्योंकि तुम एक अवधूत हो और पता नहीं कब क्या कर बैठो। तो नित्यानंद प्रभु को इस प्रकार से कह रहे थे। फिर जगदानंद पंडित, ये एक बहुत ही विशेष पार्षद थे चैतन्य महाप्रभु के, तो इनका नाम आगे आया, सुझाया गया इनका नाम। तो चैतन्य महाप्रभु फिर जगदानंद पंडित के विषय में कहते हैं कि जगदानंद ये तो हर समय मुझे इंद्रिय भोग देना चाहता है। मैं एक सन्यासी हूं और एक सन्यासी होने के नाते मुझे इंद्रिय भोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बल्कि ये जगदानंद हर समय कुछ ना कुछ इंद्रिय भोग की सामग्री मेरे लिए लाता रहता है, और केवल लाता ही नहीं, ये जबरदस्ती करता है कि मुझे वो लेना है, और यदि मैं न लूं तो ये क्रोध करता है मेरे ऊपर और मुझे डर के मारे लेना पड़ता है। जगदानंद चाहे आमा विषय भुंजाइते, यही कहे से भय चाहिए करिते। विषय भुंजाइते जगदानंद, और चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि से भय, ये जगदानंद के भय से मुझे ये सब कुछ करना पड़ता है, और लोग मेरे ऊपर लांछन लगाते हैं किस प्रकार के सन्यासी हो। तो ये तो जगदानंद है, ये नहीं मेरे साथ आ सकते, नहीं बिल्कुल नहीं। तो फिर मुकुंद, एक और पार्षद भगवान के, इनका नाम सुझाया गया। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, मुकुंद है न दुखी देखी सन्यास धर्म, तीन बारे शीते स्नान भूमिते शयन। मुकुंद भी जब एक सन्यासी का धर्म है कि वो तीन बार दिन में स्नान करे और सोने के लिए वो जमीन पर सोए, जब मुकुंद ये देखता है कि मैं ठंड हो या गर्मी हो चाहे कोई भी मौसम हो, मैं तीन बार स्नान कर रहा हूं और जमीन पर सोया हूं, तो मुकुंद कुछ कहता नहीं। वो जगदानंद की तरह नहीं है, वो कुछ कहता नहीं, परंतु मुकुंद इतना ज्यादा दुखी हो जाता है मुझे ये सब तपस्या करते देख, कि मुकुंद का दुख देखकर मैं दुगना दुखी हो जाता हूं। तो यदि मैं अब इस यात्रा में जाऊंगा और पता नहीं मैं कहां रुकूंगा, क्या व्यवस्थाएं होंगी, और यदि मुकुंद मेरे साथ होगा और ये सब देखेगा तो मुकुंद दुखी होगा, और यदि मुकुंद दुखी होगा तो मैं दुगना दुखी होऊंगा। नहीं, ये मुकुंद मेरे साथ नहीं जा सकता। तो फिर एक और भगवान के पार्षद जिनका नाम था दामोदर, वो एक ब्रह्मचारी थे, तो इनका नाम सुझाया गया। तो चैतन्य महाप्रभु अब इनके विषय में कहते हैं, आमित सन्यासी दामोदर ब्रह्मचारी, सदा रहे आमार ऊपर शिक्षा दंड धरी। आमी तो सन्यासी दामोदर ब्रह्मचारी, मैं एक सन्यासी हूं और ये दामोदर एक ब्रह्मचारी है, परंतु सदा रहे अमार ऊपर, ये हर समय ब्रह्मचारी भी है परंतु मेरे ऊपर रहता है हर समय, शिक्षा दंड धरी, और हर समय मुझे शिक्षा देता रहता है कि ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, ऐसे करो वैसे करो। तो ये किस प्रकार का सेवक या सहायक रहेगा मेरा। और चैतन्य महाप्रभु एक बहुत ही सुंदर वो उपेक्षा कर रहे हैं दामोदर पंडित की। वो कहते हैं कि जो ये दामोदर है, मैं जानता हूं कि ये बहुत ही प्रगत भक्त है भगवान श्री कृष्ण का। लोकापेक्ष नाही इन्हानि कृष्ण कृपा होते, आमी लोकापेक्ष कभू न पारी छाड़ीते। कि हालांकि मैं इतना प्रगत नहीं हूं जितना ये दामोदर है, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध प्रेमा भक्ति में स्थित है, इसलिए इसे कोई लोक लज्जा नहीं, समाज की कोई लोक लज्जा नहीं इस दामोदर को, परंतु मैं इतना प्रगत नहीं हूं। देखिए भगवान की नम्रता, वो कह रहे हैं कि मैं दामोदर की तरह इतना प्रगत नहीं हूं, इसीलिए मैं दामोदर के स्तर तक नहीं आ सकता कि जो समाज की लोक लज्जा है, सन्यास का जो धर्म है, ये सब का मैं पालन करना छोड़ दूं और मैं भी उस स्तर पर जो मेरे मन में आए, जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो कुछ करूं वो पूरा समाज उसको ग्रहण करेगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो यहां पर अब कृष्णदास कविराज गोस्वामी वो बहुत ही सुंदर तरीके से समझा रहे हैं कि ये देखने को आता है कि चैतन्य महाप्रभु ये दोष निकाल रहे हैं इनका। चैतन्य महाप्रभु दोष क्यों निकाल रहे हैं? तो यहां पर बहुत सुंदर तरीके से कृष्णदास कविराज गोस्वामी समझा रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु ये दोष नहीं बल्कि उनके गुणों का बखान कर रहे थे। इहां सबार वश प्रभु हय ये गुणे दोषारोप छले करे गुण आस्वादने। कि श्री चैतन्य महाप्रभु हालांकि बाहरी दृष्टिकोण से लग रहा होगा कि दोषारोपण कर रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु तुमने ये सब किया, मुकुंद ने ये सब किया, जगदानंद पंडित ने ये सब किया, दामोदर पंडित ने ये सब किया, तो ये सब हो सकता है कि बाहरी दृष्टिकोण से चैतन्य महाप्रभु दोष का आरोपण कर रहे हैं। परंतु कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु के दो प्रयोजन थे। एक तो चैतन्य महाप्रभु अकेले जाना चाहते थे, और वो क्यों अकेले जाना चाहते थे? क्योंकि यदि किसी एक को ले जाते तो बाकी सब दुखी हो जाते, और सबको तो ले जा नहीं सकते थे। तो यदि किसी एक को, यदि नित्यानंद प्रभु को ले जाते या जगदानंद पंडित को ले जाते या और किसी को ले जाते तो फिर बाकी सब दुखी हो जाते। तो चैतन्य महाप्रभु ने सोचा कि मुझे अकेले भी जाना है और मुझे इनका गुणगान भी करना है, इनके गुणों का। परंतु यदि मैं गुणगान करूंगा तो सभी बोलेंगे भाई हमें तो गुण है तो ले जाओ हमको। तो देखिए चैतन्य महाप्रभु ने कितनी चतुराई से, हालांकि इसे कहते हैं व्याजस्तुति। व्याजस्तुति ये एक ऐसी स्तुति होती है जिसमें किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया जाता है परंतु उस प्रकार से उसका गुणगान किया जाता है, इसे कहते हैं व्याजस्तुति। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत दानी है तो कोई व्यक्ति कहे कि अरे ये तो इतना बड़ा दानी है कि एक दिन ये रोड पर आ जाएगा, तो गुणगान हो रहा है उसकी दान वृत्ति का, परंतु एक प्रकार से कुछ खोट निकाली जा रही है कि उसके वजह से वो रोड पर आ जाएगा। जैसे रूप गोस्वामी वो श्री गोविंद देव की स्तुति करते हैं इस प्रकार से, व्याज स्तुति करते हैं। तो श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि मैं सबको सावधान कर रहा हूं, कोई केशी घाट मत जाना। तो कोई पूछे भाई क्यों नहीं जाना? क्योंकि वहां पर ये श्री गोविंद देव अपने त्रिभंग स्वरूप में बांसुरी वादन कर रहे हैं। तो रूप गोस्वामी कहते हैं कोई मत जाना वहां पर, और यदि जाओ भी तो आंख खोलकर दर्शन मत करना इनके। भाई हमें रूपानुगा कहा गया है और ये हमारे आचार्य रूप गोस्वामी कहते हैं कि सबसे पहले तो कोई केशी घाट जाना मत, क्योंकि वहां पर कौन है? वहां पर श्री गोविंद देव वो अपनी बांसुरी वादन कर रहे हैं और त्रिभंग स्वरूप में खड़े हैं, और ये कह रहे हैं चले भी जाओ तो आंख खोलकर दर्शन मत करना। ये कौन से आचार्य हैं? ये कौन सी शिक्षा दे रहे हैं? ये कौन से पथ पर हमें लगा रहे हैं? तब फिर अगर पूछा जाए कि क्यों भाई ये सब क्यों ना करें, तो रूप गोस्वामी कहते हैं कि यदि तुम सब भौतिक संसार में आसक्त हो तो ये सब मत करना, क्योंकि यदि वहां पर जाके एक बार गोविंद देव जी का दर्शन कर लोगे तो सारी आसक्तियां खत्म हो जाएगी। तो यदि कोई अपनी आसक्तियों को बचाए रखना चाहता है तो केशी घाट न जाए, इसे कहते हैं व्याजस्तुति। तो उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु वो व्याज स्तुति कर रहे थे अपने भक्तों की कि नित्यानंद प्रभु वो इतने उच्च स्तर पर हैं कि ये सारे भक्त जब मैं अपने संन्यास धर्म का पालन करता हूं तो इनसे रहा नहीं जाता। और श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि यहां पर चैतन्य महाप्रभु सिखा रहे थे अपने उदाहरण से कि चाहे कोई भक्त कितना भी प्रगत क्यों ना हो, उसे जो सामाजिक नियम है उसका भी पालन करना चाहिए। और कई बार ऐसे देखने मिलता है कि कोई बहुत बहुत बड़ा प्रगत भक्त होता है, वो सामाजिक कुछ नियम पालन न भी करे तो उसे दोष दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। जैसे श्रील प्रभुपाद जी वो एम्स्टरडैम में थे और वहां पर जगन्नाथ जी की मूर्तियों का स्थापना हो रही थी, तो वहां पर भक्त अब नए नए थे तो कुछ पता नहीं था कि जगन्नाथ जी की किस प्रकार से सत्कार करना चाहिए और कितना आदर होना चाहिए। भगवान है, जगन्नाथ है, तो यज्ञ के लिए कोई सामग्री नहीं थी और कोई ठीक प्रकार की व्यवस्था नहीं की गई थी, परंतु उन्होंने उस देश के सारे टीवी चैनल्स को बुलाया था, तो सारे टीवी चैनल अपने कैमरा लेकर आए थे देखने के लिए, रिकॉर्डिंग करने के लिए कि यहां पर ये हरे कृष्णा मंदिर में ये कुछ जगन्नाथ जी की स्थापना कर रहे हैं। तो सभी जब आए और प्रभुपाद जी ने जब देखा कि कोई ठीक से व्यवस्था नहीं, तो प्रभुपाद जी बहुत क्रोधित हुए। क्रोधित इसलिए क्योंकि जगन्नाथ जी की सेवा ठीक से नहीं हो रही थी, तो वो क्रोध से पूछ रहे थे कि ये यज्ञ के लिए फल कहां पर है। तो वहां के जो टेम्पल प्रेसिडेंट थे उनको लगा, प्रभुपाद जी ने केवल इतना पूछा फल कहां, तो उन्हें लगा कि प्रभुपाद जी को भूख लगी है, तो फल काट कर लेकर आ गए प्रभुपाद जी। और बीच में अब यज्ञ शुरू होने वाला है तो उनको लगा प्रभुपाद जी को भूख लगी तो फल काट कर लाए, तो प्रभुपाद जी और क्रोधित हो गए और क्रोध अवस्था में वो सबको चिल्ला रहे थे और सभी प्रभुपाद जी को कह रहे थे कि प्रभुपाद जी वो टीवी चैनल वाले आए हैं, वो लोग रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं। प्रभुपाद जी ने कहा एकमात्र मेरी चिंता है जगन्नाथ जी की सेवा, चाहे ये रिकॉर्डिंग करें चाहे ये पूरे विश्व में मुझे दिखाएं इस प्रकार से, मैं अपनी परवाह नहीं करता। श्रील प्रभुपाद जी ऐसा नहीं कि टीवी के सामने दिखा रहे थे कि भाई पूरा एम्स्टरडैम मुझे देखेगा तो मैं एक ऐसे साधु के समान प्रतीत हूं कि सबको लगे ओम शांति, ये ओम शांति वाले साधु हैं, शांति का संदेश लेकर आए हैं। परंतु यदि भगवान की सेवा नहीं हो रही तो श्रील प्रभुपाद जी उसके लिए क्रोधित भी होना वो स्वीकार कर रहे थे। जैसे एक बार एक टीवी इंटरव्यू प्रभुपाद जी का रखा गया और इस टीवी इंटरव्यू में वो व्यक्ति पूछ रहा है प्रभुपाद जी को कि ये आपने हरे कृष्ण आंदोलन कब शुरू किया, कैसे शुरू किया और अब क्या क्या हो रहा है। तो अब जैसे ये सब जब टीवी इंटरव्यू ये सब की रिकॉर्डिंग होती है तो उनके बहुत से नियम होते हैं कि जब बोला जाए तब शुरू करो और इस तरफ देखकर और ऐसे बैठकर, क्योंकि सारी जनता आपको देख रही है तो हमारा टीवी चैनल प्रसिद्ध होना चाहिए कि ऐसा कोई व्यक्ति आया है जिसे पता है टीवी पर कैसे पेश आना चाहिए। तो बहुत से उनके नियम होते हैं, कैमरा की तरफ ऐसे देखो और जब ये प्रश्न पूछा जाए तो इसका ऐसे उत्तर देना चाहिए, तो बहुत सारे कुछ नियम थे। और प्रभुपाद जी तो वो हर समय अपने दिव्य स्तर में रहते थे कृष्ण भावना के। तो ये जो टीवी इंटरव्यू वाला पूछ रहा था प्रभुपाद जी को कि कैसे कैसे आपने आंदोलन वगैरह शुरू किया, और प्रभुपाद जी जैसे ही इसने कुछ प्रश्न पूछे कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य आपके अनुसार क्या, तो प्रभुपाद जी सीधा प्रचार करना शुरू कर दिए, क्योंकि प्रश्न पूछा है तो प्रभुपाद जी उसी को देने लगे उत्तर, भूल गए कि कोई कैमरा है सामने, जनता भी देख रही है, तुमने पूछा है तो लो। तो अब वो टीवी इंटरव्यू का कुछ समय था वो हो गया पूरा, 20-25 मिनट का, उसके बाद में सब लाइट्स बंद हो गई, कैमरा बंद हो गया और ये जो इंटरव्यू ले रहा था बस हो गया, अब हो गया तो जा रहा था। प्रभुपाद जी जा कहां रहे हो, अभी मेरा उत्तर पूरा नहीं हुआ, बैठो। तो प्रभुपाद जी को कोई चिंता नहीं, वो उसने कहा अभी इंटरव्यू टीवी शो खत्म, टीवी शो से मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे तुमसे मतलब है, तुम कृष्ण के दास हो और इस भौतिक संसार में बद्ध जीवात्मा की तरह जी रहे हो, तुम्हारा उद्धार करना ये मेरा कर्तव्य है, इसलिए जा रहे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, बैठो। परंतु श्रील प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को ऐसे भी आदेश दिया, जैसे एक बार श्रील प्रभुपाद जी जुहू में मॉर्निंग वॉक पर थे तो कुछ शिष्य आकर उन्होंने श्रील प्रभुपाद जी को पूछा कि कई बार हमें जब पुस्तक वितरण करना होता है एयरपोर्ट और ये सब जगहों पर, तो हमें ये जो धोती कुर्ता है ये पहनकर जाएं तो हमें एंट्री नहीं मिलती, अंदर हमारा प्रवेश रोक दिया जाता है। तो कई जो भक्त हैं वो अपने बाल बढ़ाए हैं और पैंट शर्ट पहनकर जाते हैं आपकी पुस्तक वितरण करने के लिए। तो प्रभुपाद जी समझ गए कि कुछ लोग जो चाहते थे पैंट शर्ट पहनना वो बहाना ले रहे थे एयरपोर्ट में जाकर ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने का। तो प्रभुपाद जी ने जब ये जान लिया कि अंदरूनी कारण ये है, तो प्रभुपाद जी ने कहा क्यों धोती कुर्ता पहनकर जाना चाहिए, तिलक लगाकर कंठी माला, क्या उसमें शर्माना क्या है? तो वो कह रहे थे प्रभु जी प्रभुपाद शर्माना नहीं बल्कि थोड़ा लगता है, कई बार भक्तों को लगता है कि जब मंदिर में आते हैं तो पूरा माला बाहर निकाल के जोर जोर से हरे कृष्णा और लंबा तिलक पीछे तक, परंतु जैसे ही थोड़ा बाहर गए तो फिर पानी की बोतल से पूरा तिलक मिटा लिया और वो कंठी अपना जप माला के बजाय काउंटर, तो लोगों को पता नहीं लगेगा क्योंकि जब जब माला सबके सामने बाहर निकाली जाती है तो लोग सब टेढ़ी नजरों से देखते हैं। और ये 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 क्या चल रहा है? और यदि तिलक विलक लगाकर किसी ट्रेन में बस में बैठो तब तो लोग देखते रहते हैं कि ये क्या ऊपर। एक व्यक्ति मुझे देख रहा था और पूछा कि ये कैसे दो लाइन कैसे निकालते हो। तो उसे एक घंटे तक समझ में नहीं आया कि दो लाइन कैसे निकाली जाती। तो मैंने कहा स्केल से। तो कई बार लोग जो हैं वो ये सोचते हैं कि भाई अगर हम ये वैष्णव का जो वेशभूषा है इसे पहनकर जाएंगे तो थोड़ा, तो उनको लगता है कि पैंट शर्ट जो है वो समाज का कपड़ा है, समाज की वेशभूषा है, ये पहनकर जाना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि क्यों धोती कुर्ता पहनकर जाओ, शर्माना क्या है उसमें। और जैसे प्रभुपाद चल रहे थे तो प्रभुपाद जी ने देखा सुबह के समय एक व्यक्ति लोटा लेकर बैठा हुआ था सुबह के समय। तो प्रभुपाद जी कहते देखो कोई लोक लज्जा नहीं, कोई लोक लज्जा नहीं, सुबह के समय इतनी सारी भीड़ है परंतु अपना काम कर रहा है। तो यदि इस व्यक्ति को कोई लोक लज्जा नहीं तो तुम्हें तिलक कंठी माला धोती कुर्ता पहनने में क्यों लज्जा होनी चाहिए। तो सारे भक्त समझ गए जय प्रभुपाद। तो यहां पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु वही चिंता में थे कि यदि ये सारे पार्षद मेरे साथ आएंगे दक्षिण भारत में तो ये सारे पार्षद जो हैं ये मुझे हर समय इंद्रिय भोग और भोग विलास के सारे साधन देते रहते हैं, तो जब लोग देखेंगे कि भाई ये सन्यासी है कि कौन है तो मेरे ऊपर लांछन लगाएंगे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु वो चाहते थे कि वो अकेले जाएं। तो यहां पर अब कृष्णदास कविराज गोस्वामी वो गुणगान कर रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार से अपने भक्तों से इतना प्रेम करते थे कि प्रेम के कारण वो ये नहीं बोल पा रहे थे कि मत आओ मेरे साथ, क्योंकि वो स्वयं भी अपने भक्तों के बिना नहीं रह पा रहे। परंतु जैसे हमने सुबह सुना कि उन्होंने ये छल किया दक्षिण देश उद्धारिते, कि दक्षिण क्षेत्र का उद्धार करने के लिए। तो यहां पर फिर कुछ पार्षद चार भक्त सामने आए और उन्होंने कहा कि आप केवल हम चारों को ले जाओ और जो जो आपने ये मुकुंद दामोदर पंडित इनके विषय में कहा ठीक है इनको मत ले जाओ, बस केवल हम चार को ले जाओ। तो चार भक्त सामने आए, परंतु चैतन्य महाप्रभु वो बहुत दृढ़ थे तो उन्होंने कहा नहीं मैं अकेले जाना चाहता हूं। फिर से चैतन्य महाप्रभु ने कहा, तो फिर नित्यानंद प्रभु आए और उन्होंने कहा कि ठीक है हम आपके ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं करेंगे, आपको यदि अकेले जाना है तो आप अकेले जाइए, परंतु एक मेरा सुझाव है कि आप जाएंगे तो आप अपने साथ एक कमंडलू लेकर जाएंगे और एक आपका दंडा होगा और एक आपका बहिर्वस्त्र जब स्नान करने के बाद पहनने के लिए वो होगा, तो ये तीन चीजें आपके साथ होंगी और आप हर दिन अपने उंगलियों पर ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं गिनकर। तो एक हाथ से आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं और दूसरे हाथ से गिनते हैं कितनी माला हुई है। तो इसलिए आपको कोई एक व्यक्ति चाहिए जो ये सब आपका बहिर्वस्त्र लोटा और दंडा पकड़े, क्योंकि दोनों हाथ तो आपका व्यस्त रहेगा जप में। तो वो कहते हैं तोमारा दुई हस्तबद्ध नामगण ने जल पात्र बहिर्वास वही बे के मोने। वो कह रहे हैं तुम्हारा दुई हस्त बद्ध नाम गणने, दोनों हस्त आपके नाम की गणना करने में लगे रहेंगे, इसीलिए आपको चाहिए एक भक्त चाहिए जो आप का बैग उठाए। बैग तो कुछ नहीं था बल्कि केवल ये तीन चीजें बस। तो यहां पर देखिए श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य लिखते हैं और वो कहते हैं कि यहां पर नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु का उदाहरण देते हुए ये सिखा रहे हैं कि जब भगवान स्वयं आते हैं एक भक्त के रूप में तो भगवान सिखा रहे हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप कैसे करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, नाम गणने गिनकर करना चाहिए। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जानते थे कि इस कलयुग में जब मैं ये हरे कृष्ण महामंत्र जो सबसे सरल उपाय है भगवत प्रेम प्राप्ति का वो जब मैं दूंगा तो लोग कहेंगे नाम तो हम लेते रहते हैं, कभी भी ले सकते हैं और हर समय लेते रहते हैं। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि ये माला पर ही क्यों जप करना चाहिए, भगवान का नाम तो कभी भी लिया जा सकता है। तो कभी भी लिया जा सकता है तो माला पे क्यों नहीं लिया जा सकता। तो ये प्रश्न पूछा जाता है और ये 16 माला क्यों। तो एक व्यक्ति मुझे पूछ रहा था कि ये 16 माला इसका क्या है, ये 16 नंबर क्या है। तो मैंने कहा यदि 17 होता तो आप वो पूछते, 18 होता तो वो पूछते, 18 क्यों। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने ये भी कह दिया कीर्तनीय सदा हरि, संख्या पूर्वक नाम गान नटी भी, जो 6 गोस्वामी उनके विषय में कहा गया है कि संख्या पूर्वक नाम उनकी संख्या हुआ करती थी कि कितना नाम लेंगे। हरिदास ठाकुर जो नामाचार्य हैं, इस कलयुग में हरिनाम के आचार्य चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें स्थापित किया, और हरिदास ठाकुर वो भी गिनते थे। और कितनी माला करते थे वो, कोई जानता है? 192 खाली, 300,000 नाम गिनते थे रोज, गिन कर किया करते थे। तो इसीलिए यहां पर चैतन्य महाप्रभु अपने उदाहरण से दिखा रहे हैं कि जब हम ये नाम जप लेते हैं अपने जीवन में तो संख्या पूर्वक लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज 64 कर दिया और फिर 64 दिन तक कुछ नहीं किया। जैसे एक मंदिर में श्रील प्रभुपाद जी प्रवचन दे रहे थे तो अचानक प्रभुपाद जी ने पूछा कि सभी 16 माला कर रहे हैं, तो एक भक्त ने हाथ उठाया और उन्होंने कहा, प्रभुपाद जी मैं आपके प्रचार कार्य में इतना व्यस्त रहता हूं कि मुझे सोने के लिए भी केवल 4 घंटे मिलते हैं, केवल 4 घंटे सोने के लिए मिलते हैं। तो अब कोई व्यक्ति इतना प्रचार कार्य में व्यस्त है कि सोने के लिए भी केवल 4 घंटे मिले तो सहानुभूति हो जाएगी, ठीक है। परंतु प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, 4 घंटे सोने मिलता है तो 2 घंटे सो और 2 घंटे 16 माला करो। तो उनको तो लगा था प्रभुपाद जी कहेंगे वाह अरे इतना व्यस्त है मेरे प्रचार कार्य में, लेकिन प्रभुपाद जी ने कहा यदि 4 घंटे हैं तो 2 घंटे सो और 2 घंटे 16 माला करो। इतना ज्यादा प्रभुपाद जी भी उसके ऊपर जोर दे रहे थे, संख्या पूर्वक नाम। इसलिए उदाहरण दिया गया है कि हमारा जो नाम जप है, चाहे कोई 4 माला कर रहा हो चाहे 16 माला कर रहा हो, हमारा जो नाम जप है वो किस प्रकार से होना चाहिए। जैसे एक व्यापारी दिन के अंत में नोट गिनता है, नोट कैसे गिनता है एक व्यापारी, ऐसा नहीं कि रास्ते के बीच में नोटों की गड्डी ले जाकर सबके सामने गिन रहा है। नोट गिनता है और पहले देखता है कि कोई मुझे कहां पर डिस्टर्ब तो नहीं करेगा गिनते समय। और कई बार यदि कोई व्यक्ति नोट गिन रहा है और उसको पूछो कैसे हो तो वो कुछ कहेगा भी नहीं, वो देखेगा भी नहीं। नोट गिनते समय व्यक्ति इतना वो उसमें मशगूल रहता है कि कोई व्यक्ति यदि उसे पूछे, ये पूछे जीवन का उद्देश्य क्या है, क्यों आए हो इस संसार में, तो व्यक्ति कहेगा अरे ये उद्देश्य है सबसे पहले। तो जैसे एक व्यक्ति कितना ध्यान से नोट गिनता है, और कई बार देखो जब कोई बहुत बड़ी रकम होती है तो उसे 3-4 बार गिनेगा कहीं 1-2 नोट मिस ना हो जाए, और पानी लगाकर थूक लगाकर अलग अलग कि हर एक नोट अलग अलग होना चाहिए, कोई भी नोट चिपक कर ना चला जाए किसी व्यक्ति के लिए। और यदि बैंक में जाओ तो उधर आजकल नोट की मशीन है तो मशीन के अंदर डालते हैं और वो मशीन गिनकर उसके बाद भी संतुष्टि नहीं होती तो फिर से वो गिनता है, पता नहीं वो मशीन में भी कुछ गड़बड़ हो जाए। तो व्यक्ति कितना ज्यादा ध्यान से नोटों की गिनती करता है, कोई बात नहीं करेगा कहीं पर और उसका ध्यान नहीं वो विचलित करेगा। तो ये तुलना की गई है हमारे जप से कि हमारा जप भी अब नोटों की तुलना जब से हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसी का मूल्य लोग जानते हैं इस कलयुग में, नोटों का मूल्य। नहीं तो भगवान का जो जप है वो तो बहुमूल्य है, तो यदि कोई व्यक्ति नोटों की गिनती में इतने ध्यान लगा सकता है तो जप में क्यों नहीं लगा सकता। परंतु कई बार ऐसा देखा जाता है कि जब हम जप करना शुरू करते हैं तो जप में ध्यान के अलावा और सब जगह ध्यान रहता है। यहां तक कि नोट भी गिन सकते हैं करते करते वो जप। तो ये तुलना दी गई है कि हमारा जप इतने ध्यान पूर्वक होना चाहिए, संख्या पूर्वक होना चाहिए, जैसे कोई व्यक्ति नोटों को गिनने में ध्यान लगाता है। एक भक्त दो भक्त वो कार्यक्रम के लिए जा रहे थे, तो वो गाड़ी में बैठे और जैसे ही गाड़ी में बैठे तो एक भक्त ने कहा, अरे 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 गाड़ी शुरू मत करो, बंदूक भूल गया। तो ये भक्त को लगा, भाई हम तो प्रचार के कार्यक्रम में जा रहे हैं, बंदूक कहां लेकर आ रहे हो। तो गाड़ी से बाहर निकले, अपने घर गए, तो ये भक्त जो गाड़ी में बैठे थे बहुत उत्सुक थे कि कौन सी बंदूक वगैरह है इनके पास। तो आकर पूछे, भाई कौन सी बंदूक है और बंदूक क्यों लेकर जा रहे हो प्रोग्राम में। तो दिखाया बीड बैग, ये है बंदूक। तो जैसे उन्होंने कहा, जैसे एक सैनिक जो है वो कभी बाहर रणभूमि में नहीं निकलेगा बिना बंदूक के। सैनिक को यदि कहो कि रणभूमि में जाओ तो सबसे पहला प्रश्न बंदूक कहां है, बिना बंदूक के नहीं। तो उसी प्रकार से ये पूरा जो संसार है एक रणभूमि के समान है और हर समय बंदूक होनी चाहिए, हरिनाम की बंदूक होनी चाहिए। ये बीडबैग, इसकी तुलना एक राइफल से की गई है और राइफल के अंदर भी यदि गोली नहीं है तो कोई काम की नहीं वो राइफल। तो बीडबैग की तुलना राइफल से की गई है और ये जो हरे कृष्ण महामंत्र उस बीडबैग से निकलता है उसकी तुलना उस गोली से की गई है। जैसे हमारे मंदिर में गुरुकुल है, पहले भी अभी उसको तो हमारे फार्म पर शिफ्ट किया गया, पहले सारे बच्चे गुरुकुल के बच्चे वो मंदिर में ही रहा करते थे। तो इनके लिए नियम बनाया था कि जो 5 वर्ष तक हैं वो कुछ 2 या 4 माला करें रोज, 5 वर्ष के ऊपर वाले बच्चे 8 या 10 माला तक करें, उससे ऊपर आयु के बच्चे वो 16 माला करें। तो हुआ ऐसा करता था कि जो छोटे बच्चे केवल 5 वर्ष तक के, ये एक सर्कल बनाकर बैठते थे मंदिर में और हमारे जो उनके इंचार्ज थे राधा गोपीनाथ प्रभु उनके साथ बैठकर वो जप करते थे और कुछ 6 से लेकर 6:15 तक 15 मिनट उनका जप होता था और उसके बाद नीचे जाकर वो यदि उनको आराम करना है तो आराम कर सकते थे या कुछ प्रसाद खाना है प्रसाद खा सकते थे। तो राधा गोपीनाथ प्रभु एक बार बैठे थे और देखा कि एक जो लड़का है वो बहुत ऐसे सर हिला के जोर जोर से जप करता है और माला ऐसे हिला हिला के। कई बार देखा जाता है बहुत जोर जोर से लोग सर हिलाते हैं, ऐसा लगता है कि खोपड़ी बाहर आ जाएगी यहां से। ट्रेन में हम लोग एक बार जा रहे थे तो सुबह सुबह हमारे भक्त सब जल्दी उठकर कहां कहां स्नान कर लेते हैं पता नहीं लगता है लोगों को। ट्रेन में लोगों को पता नहीं लगता है कि जब ये भक्त उठते हैं तो ये स्नान कहां करते हैं, हम तो घर पे भी नहीं करते, ट्रेन में भी करते हैं स्नान। और फिर तिलक लगा रहे हैं ये वो, तो सब लोग ध्यान से देखते रहते हैं कि क्या इनकी क्रियाएं हैं। और फिर हम लोग मायापुर यात्रा के लिए जा रहे थे तो हमारे एक ब्रह्मचारी भक्त वो जब शुरू करते हैं तो बहुत भाव में आकर उनका सर इधर उधर बहुत हिलता है और माला भी हिलती है। और तो एक यात्री देख रहा था, वो ध्यान से देख रहा था, तो ये हरे कृष्ण 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 ऐसे ऐसे सर हिलाकर ऐसे कर रहे थे जब, तो मैं इस व्यक्ति को देख रहा था और ये इन भक्त को देख रहे थे। तो फिर ये देखिए कि मैं इनको देख रहा हूं तो मेरे को बोलते हैं ये क्यों जबरदस्ती इसको दिया गया है। तो मैंने कहा जबरदस्ती, बोला मना कर रहा है। वो 15 मिनट तक उनको देखा, मैंने कहा मना कैसे कर रहा है, बोला ऐसे से कर रहा है। तो फिर वो पता नहीं वो उस सर ऐसे हिलाना कैसे शुरू हुआ है। तो यहां पर किस पॉइंट पे बात बोल रहा था, हाँ तो राधा गोपीनाथ प्रभु ने देखा कि वो सबसे छोटा एक जो था उस बहुत ही ज्यादा सर हिला रहा है। और तो फिर और ऐसा देखा जाता था कि जैसा ही उसका जो बीडबैग के ऊपर जो काउंटिंग माला था बराबर 6:15 पर उसका माला खत्म होता था। भैया इतना अच्छा टाइमिंग है इसका। कभी कभी कुछ मॉर्निंग प्रोग्राम में कुछ लेट भी हो जाता है शिक्षाष्टकम गाते गाते, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि कुछ 1-2 मिनट ज्यादा लग जाए किसी माला करने, उसका 6:15 को चाहे कितना भी लेट जब शुरू हो 6:15 को पूरा। तो राधा गोपीनाथ प्रभु ने कहा कि ठीक है सभी लोग आज अपनी माला बाहर निकालो और माला बाहर निकाल के जप करो, फीडबैक से बाहर निकालो माला। तो सभी ने अपनी माला निकाली और ये अब माला बाहर नहीं निकाल रहे। तो पूछा तुम्हारी माला बाहर निकालो, तो वो कुछ नहीं कह रहा। तो राधा गोपीनाथ प्रभु ने उसकी फीडबैक ली, अंदर एक भी माला नहीं, कुछ नहीं अंदर, फीडबैक पूरी खाली। और वो हिला हिला के वो 6:15 तक, जैसे ही 6:15 हुआ बस। लेकिन बाहर की जो काउंटिंग माला थी बहुत बड़ी थी वो। तो यहां पर तुलना की गई कि जो बीडबैग है वो राइफल के समान है और उसके अंदर जो गोली है वो है वो हरे कृष्ण महामंत्र। तो श्रील प्रभुपाद जी ने एक बार देखा कि किसी की बीडबैग ऐसे लटकी हुई है। तो प्रभुपाद जी देखे 1 घंटे बाद फिर से वो ऐसी लटकी हुई, 2 घंटे बाद ऐसी लटकी हुई। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ये माला रो रही है यहां पे, कोई इसे उठाकर जप करो, किसकी माला है ये। तो कई बार देखा जाता है कि जब दिन में सुबह 16 माला हो गया उसके बाद में फीडबैक को ऐसी जगह पर रखते हैं कि नजरों के सामने भी नहीं आनी चाहिए कहीं। आज का 16 माला हो गया बस। और कई बार ये माला ऐसे लगती है कि सुबह जब उठते हैं तो पता लगता है कि अब आज भी 16 माला करना है। तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा विशाल हिमालय पर्वत उसके ऊपर चढ़ना है। परंतु यहां पर चैतन्य महाप्रभु वो कह रहे हैं, श्रील प्रभुपाद जी ने भी कहा कि यदि हम कृष्ण भावनामृत आंदोलन में प्रगति करना चाहते हैं तो 99% प्रगति हमारी होगी ये हरे कृष्ण महामंत्र के जप से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 99% हमारी प्रगति होगी जब हम ये हरे कृष्ण महामंत्र ठीक से करेंगे और बाकी सारी जो चीजें हैं भगवान के अर्च विग्रह की पूजा या तीर्थ स्थान की यात्रा या जो भी कुछ और नियम हैं वो केवल 1% है। जैसे मान लो स्कूल में फाइनल एग्जाम के पहले, आजकल एग्जाम का टाइम चालू है, फाइनल एग्जाम के पहले टीचर विद्यार्थियों को कहता है कि 99% प्रश्न आएंगे पहले चैप्टर से। यदि ये कह दे तो वो जो विद्यार्थी हैं वो फिर तो बाकी का किताब पढ़ेंगे नहीं, वो केवल फर्स्ट चैप्टर, बस वो फर्स्ट चैप्टर को पूरा घोट लेंगे। तो उसी प्रकार से यहां पर कहा गया, श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि 99%, तो कितना ध्यान हमें देना चाहिए, जैसे वो विद्यार्थी कितना ध्यान देगा केवल उस एक चैप्टर के ऊपर। जब शिक्षक ने कह दिया कि सारे प्रश्न 99% प्रश्न पहले चैप्टर से आने वाले हैं, तो कितना ध्यान देगा वो पहले चैप्टर के ऊपर, यहां तक कि फर्रे बनाकर केवल उसी चैप्टर के ले जाएगा वो। परंतु यदि फर्रे भी बनाकर ले जाए, चिट भी बनाकर ले जाए, तो पता होना चाहिए कि ये कितनी। कई बार लोगों को, मेरे कुछ मित्र थे, उनको पता भी नहीं रहता, इतनी सारी चिट ले जाते हैं और एक चिट रहती है, उसको कहते हैं मास्टर चिट, कि सारे जगह पर कौन सी चिट कहां पर है वो बताने के लिए। जैसे हाल ही में जापान में एक विद्यार्थी को डॉक्टर के पास जाना पड़ा, कान में कुछ तकलीफ हुई। तो डॉक्टर के पास जब वो गया, तो डॉक्टर ने जब देखा कान में क्या तकलीफ है, तो पता लगा कि कान के अंदर एक छोटी सी बैटरी अटकी हुई है, इतनी सी बैटरी। तो कैसे, तो ऑपरेशन से उस बैटरी को बाहर निकाला, तो पूछा गया कि ये बैटरी अंदर कहां से गई। तो वो, क्योंकि जापान में जो टेक्नोलॉजी है बहुत प्रगत है, तो उसने टेक्नोलॉजी क्या निकाली कि उसने एक इतना सा कुछ माइक्रोफोन जैसा कान के अंदर फिट किया एग्जाम में जाने से पहले कान के अंदर, और वो उसका कुछ रिसीवर भी था। तो जो भी प्रश्न था, उसका जो मित्र बाहर किताब लेकर बैठा है, तो बोल रहा है कि ये प्रश्न है, इसका उत्तर बोलो, तो उसको सुनाई दे रहा है उसके अंदर वायरलेस के द्वारा, और वो उसको लिख रहा है। परंतु हुआ ऐसा कि उसकी जो बैटरी थी वो अटक गई अंदर। तो भगवान सब कुछ नहीं देते, तो यहां पर सब कुछ लिखा, परंतु यहां पर ये बंद हो गया फिर बाद में उसका काम। तो कई बार यदि उस अध्याय का फर्रा भी कोई ले जाए, तो उसे पता रहना चाहिए कि क्या है उस अध्याय में, नहीं तो प्रश्न भी पता रहना चाहिए, उत्तर भी पता रहना चाहिए। तो जब चैतन्य महाप्रभु इतना ज्यादा जोर दे रहे हैं 99% प्रगति हमारी इस हरिनाम के द्वारा, तो कितना हमें ध्यान देना चाहिए हरिनाम के ऊपर। और ये नहीं है कि ठीक है मैं और किसी नियम का पालन नहीं करूंगा, अब कह दिया है यहां से कि 99% हरिनाम के ऊपर, तो मेरे को कोई सेवा मत देना, और फिर ये चार नियम की क्या आवश्यकता है, फिर 99% तो इसी के अंदर है। जैसे कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि जितना पासिंग मार्क है उतना ही पढ़ते हैं, कितना है 35% 35% 35% उतना ही पढ़ेंगे। परंतु भक्ति में क्या है, जब तक 100% हम शुद्ध नहीं होंगे, तब तक हम भगवान के धाम नहीं जा सकते, 100% होना चाहिए। प्रभुपाद जी ने कहा यदि एक गुलाब जामुन से भी हम आसक्त हो, तो वो भी खाने के लिए फिर से यहां आना पड़ेगा, और उसे खाने के लिए उसको पकाना पड़ेगा, और उसको पकाने के लिए मैदा लेना पड़ेगा, और उसको खरीदने के लिए पैसा, उसके लिए नौकरी, पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम चालू हो जाएगा, एक गुलाब जामुन। तो प्रभुपाद जी ने कहा यदि एक गुलाब जामुन से भी हम आसक्त हैं, तो फिर से इस भौतिक संसार में आना पड़ेगा उसको खाने के लिए, परंतु यदि वो भगवान का प्रसाद है तो वहीं पे मिल जाएगा। तो यहां पर चैतन्य महाप्रभु अपने उदाहरण से बता रहे हैं कि किस प्रकार से बद्ध नाम गणने, नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं कि आप नाम की गणना करते हो, इसलिए आपको एक व्यक्ति की आवश्यकता है जो आपका बहिर्वस्त्र लोटा कमंडलू ये सब उठाए। तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि ये एक कृष्णदास है और ये बहुत ही एक सरल भक्त है, बिल्कुल बात नहीं करता, ये कोई आदेश नहीं देगा आपको, सारा आदेश का पालन करेगा। इसका नाम है कृष्णदास। तो ये एक कृष्णदास को आपके सेवक के रूप में ले जाओ। तो नित्यानंद प्रभु ने यह सुझाव दिया। और सभी भक्त भी, और सभी भक्तों को यह भी नहीं लगेगा कि कोई बहुत हम में से कोई गया है, कोई साधारण अभी भी आया है, तो उसको ले जाओ तो किसी को लगेगा भी नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु फिर नित्यानंद प्रभु का यह आदेश स्वीकार करते हैं और फिर कहते हैं कि अब मुझे सार्वभौम भट्टाचार्य से मिलना है। तो सभी अब सार्वभौम भट्टाचार्य के घर जाते हैं और वहां पर जब जाते हैं तो सार्वभौम भट्टाचार्य बहुत स्वागत करते हैं चैतन्य महाप्रभु का और उनके सारे भक्तों का। और श्री चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य को भी ये संदेश देते हैं कि मैं दक्षिण भारत की यात्रा करने जा रहा हूं, और उनको भी कहते हैं कि विश्वरूप को ढूंढने के लिए मैं जा रहा हूं, तो ये कारण है जाने का। तो सार्वभौम भट्टाचार्य वो तुरंत व्याकुल हो जाते हैं और वो एक एक जैसे एक पीड़ित व्यक्ति है उस प्रकार से होकर वो कहते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु को कि अभी अभी तो आपने मेरा उद्धार किया है, मैं एक मायावाद के चंगुल में फंसा हुआ व्यक्ति जिसका उद्धार आपने किया अभी अभी, और आपकी मैं सेवा भी नहीं कर पा रहा, और उससे पहले आप मुझे छोड़कर जा रहे हो। तो सार्वभौम भट्टाचार्य वो कहते हैं, शिरे वज्र पड़े यदि पुत्र मरियाय, ताहा सही तोमार विच्छेद सहन न आए। वो कहते हैं कि यदि मेरे ऊपर वज्रपात हो जाए, शिरे वज्र पड़े, मेरे सिर के ऊपर यदि वज्रपात हो जाए, मुझे स्वीकार है। और उसके आगे कहते हैं, पुत्र मरी आए, यदि मेरा पुत्र भी मर जाए, वज्रपात मेरे सिर पर हो जाए, यदि मेरा पुत्र मर जाए, वो भी मुझे स्वीकार है। सार्वभौम भट्टाचार्य कह रहे हैं भगवान को, ताहा सही तोमार विच्छेद सहन न आए, परंतु आपसे विच्छेद, आपसे वियोग, ये सहन नहीं होगा मुझसे। तो इसलिए सार्वभौम भट्टाचार्य वो चैतन्य महाप्रभु को कहते हैं कि कृपया कुछ दिन आप रुकिए ताकि मैं आपके चरणों की सेवा कर पाऊं, तो कुछ दिन आप रुकिए यहां पर। तो चैतन्य महाप्रभु जब सार्वभौम भट्टाचार्य के आग्रह सुनते हैं तो कहते हैं ठीक है, मैं रुक जाता हूं। तो सार्वभौम भट्टाचार्य अपनी पत्नी को कहते हैं कि सारी व्यवस्थाएं करो चैतन्य महाप्रभु के रहने की। 5 दिन चैतन्य महाप्रभु रुकते हैं सार्वभौम भट्टाचार्य के निवास स्थान पर, और फिर चैतन्य महाप्रभु वो जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाते हैं, और वो जगन्नाथ जी से आज्ञा लेने जा रहे हैं कि हे भगवान, आप आज्ञा दीजिए कि मैं दक्षिण भारत की यात्रा कर पाऊं। तो जगन्नाथ जी से आज्ञा लेने जाते हैं और वहां पर जगन्नाथ जी के जो पुजारी हैं वो जगन्नाथ जी का हार, महाहार, और जगन्नाथ जी का प्रसाद लेकर चैतन्य महाप्रभु को देते हैं। और जैसे ही चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी का ये प्रसाद पाते हैं तो भाव विभोर होकर वो नृत्य प्रारंभ करते हैं जगन्नाथ जी के समक्ष, और सारे जो चैतन्य महाप्रभु के पार्षद हैं वो भी चैतन्य महाप्रभु के साथ उस नृत्य में भाग लेते हैं, कीर्तन में भाग लेते हैं। और इसके पश्चात फिर चैतन्य महाप्रभु वो अलारनाथ नाम की जगह पर जाते हैं जो जगन्नाथपुरी से बहुत निकट है, वहां पर जाते हैं अलारनाथ देव जी का दर्शन करने के लिए। और वहां पर सार्वभौम भट्टाचार्य उनके जो संबंधी हैं गोपीनाथ आचार्य उनको कहते हैं कि जो बहिर्वस्त्र है वो मैंने तैयार किया है, कुछ 5 जोड़ी वो इनके लिए, और कुछ प्रसाद ये सब इसे लाकर जो इनका सेवक है उनको लाकर दो। तो इस प्रकार से सार्वभौम भट्टाचार्य वो चैतन्य महाप्रभु को एक वो आदेश देते हैं नम्रता पूर्वक। वो कहते हैं कि आप जा रहे हैं ठीक है, परंतु एक मेरा आग्रह है, अनुरोध है आपके समक्ष कि दक्षिण भारत में विद्यानगर नाम का एक क्षेत्र है जो गोदावरी के तट पर है, और यहां पर एक बहुत ही प्रगत भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं जिनका नाम है श्री रामानंद राय। और ये वहां पर हालांकि प्रताप रुद्र महाराज की सरकार के एक अधिकारी हैं, निजी सरकारी अधिकारी हैं ये, परंतु ये भगवान श्री कृष्ण के इतने प्रगत भक्त हैं कि आज तक मैंने श्री रामानंद राय से अधिक भक्ति में प्रगति किसी की नहीं देखी। और मैं जिस समय मायावादी एक मायावादी था, उस समय मैंने श्री रामानंद राय के मुख से सुना था भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के विषय में, परंतु मैं उस समय केवल व्यंग किया करता था कि क्या भक्ति, भक्ति योग, ये सब भक्ति जो है केवल ये जो भावुक लोग होते हैं उनके लिए है, जो विद्वान हैं उनके लिए है, योग वशिष्ठ और ये सारे वेद का ज्ञान अर्जित करना। तो मैं बहुत व्यंग से मजाक उड़ाया करता था रामानंद राय का, परंतु मैं जानता हूं अब आपसे सुनने के पश्चात कि आप श्री रामानंद राय से मिलिए और अवश्य ही आप श्री रामानंद राय का जो संघ है आपको बहुत प्रसन्नता देगा। तो सर्वम भट्टाचार्य वो कहते हैं, शूद्र विषय ज्ञाने उपेक्षा न करिबे, अमार वचने तांद्रे अवश्य मिलिबे। सर्वम भट्टाचार्य कह रहे हैं कि हालांकि श्री रामानंद राय वो एक कायस्थ परिवार में पैदा हुए हैं, जो कि एक प्रकार का शूद्र का परिवार है, और उनका यदि आप कार्य भी देखो तो सरकारी अधिकारी हैं, तो सरकारी काम में लगे रहते हैं, परंतु ये बाहरी चीजें मत देखना उनकी। शूद्र विषयी ज्ञाने उपेक्षा न करी, उनकी उपेक्षा मत करना आप ये सब देखते हुए। आमार वचने तानरे अवश्य मिली बे, ये मेरा वचन आप लेकर जाइए और उनसे अवश्य मिली बे, अवश्य उनसे मिलना आप। और यहां पर उनका गुणगान करते हुए फिर सर्वम भव भट्टाचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु को भाव विभोर होकर उनकी उनके चरणों की वो सेवा करते हैं। और यहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु अब निकलने से पहले उन्होंने सबसे आज्ञा ली, परंतु अब वो सर्वभौम भट्टाचार्य से आज्ञा ले रहे हैं। और एक बहुत ही सुंदर श्लोक में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु एक ऐसे सन्यासी के धर्म का पालन कर रहे थे कि जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना चाहता है उसे ये सारे जो धर्म है चैतन्य महाप्रभु सिखा रहे हैं उसका पालन करना चाहिए। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, घरे कृष्ण भजी मोर करिह आशीर्वादे, नीला चले आसिये न तोमार प्रसादे। घरे कृष्ण भजी मोर करिह आशीर्वाद, आशीर्वाद मांग रहे हैं वो सर्वम भट्टाचार्य से। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु एक सन्यासी थे, और एक सन्यासी जो सबसे ऊंचा होता है वर्णाश्रम में, वर्ण और आश्रम में सबसे ऊंचे होते हैं सन्यासी, और चैतन्य महाप्रभु एक सन्यासी थे, परंतु चैतन्य महाप्रभु आशीर्वाद मांग रहे हैं एक गृहस्थ से जो अभी अभी भक्ति में आए हैं सर्वम भट्टाचार्य। इससे पहले वो एक मायावादी थे, एक ब्रह्मवादी थे, तो उनसे वो आशीर्वाद मांग रहे हैं। तो यहां पर चैतन्य महाप्रभु दिखा रहे हैं कि जो कृष्ण का भक्त बन जाता है चाहे वो किसी भी आश्रम में क्यों ना हो, वो व्यक्ति आशीर्वाद मांगने योग्य है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान और जो स्वयं भगवान भक्त के रूप में आए, और कैसे भक्त एक सन्यासी के आश्रम में, वो आज्ञा ले रहे हैं, आशीर्वाद मांग रहे हैं सर्वभौम भट्टाचार्य का। तो इसीलिए उस श्लोक में कहा गया है, किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र केने नाय, सेई कृष्ण तत्व वेता जेई गुरु होए। कि चाहे कोई विप्र है, कोई सन्यासी है, कोई शूद्र है, परंतु जो व्यक्ति कृष्ण तत्व को जानता है वो व्यक्ति है असली गुरु। इसीलिए शास्त्रों में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, जैसे महाभारत में अर्जुन और अश्वत्थामा का उदाहरण दिया गया है। अश्वत्थामा जो एक ब्रह्मचारी था और अर्जुन जो एक गृहस्थ थे, परंतु श्रीमद् भागवत में ये वर्णन है कि जब अश्वत्थामा ने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा और जब अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो अश्वत्थामा में कोई शक्ति नहीं थी उस ब्रह्मास्त्र को वापस लेने की। हालांकि वो एक ब्रह्मचारी था और ब्रह्मचारी होने के कारण उसके अंदर ज्यादा शुद्धता पाई जानी चाहिए कि ज्यादा ब्रह्म तेज और शुद्धता, जिसके कारण वो अपना ब्रह्मास्त्र फिर से उसने ले लिया होता। और अर्जुन तो एक गृहस्थ थे, उनके पत्नियां थीं और बच्चे थे, परंतु अर्जुन के अंदर अश्वत्थामा से ज्यादा शक्ति थी ब्रह्मास्त्र को फिर से वापस लेने की। तो कारण बताया गया है कि जब दुर्योधन अब रणभूमि में मूर्छित पड़ा हुआ है, बस कुछ क्षण रह गए उसके मरने के, तो दुर्योधन अश्वत्थामा को बुलाता है और अश्वत्थामा को बुलाकर वो क्या सुझाव देता है, वो कहता है कि मेरी पत्नी जीवित है, अब तक मैं तो मर रहा हूं, मेरी पत्नी जीवित है। देखिए दुर्योधन की आसक्ति हस्तिनापुर के सिंहासन से, वो कह रहा है अश्वत्थामा को कि मेरी पत्नी जीवित है, तुम जाकर मेरी पत्नी के द्वारा एक पुत्र उत्पन्न करो ताकि मेरा कुछ ना कुछ तो एक अंश रहेगा जीवित, और वो जाकर फिर लड़ेगा और हो सकता है वो सिंहासन पे बैठे। देखिए आसक्ति दुर्योधन की कि वो अश्वत्थामा को कह रहा है कि जाकर मेरी जो पत्नी है उसके द्वारा एक पुत्र उत्पन्न करो और उसे राज सिंहासन पर बिठाओ हस्तिनापुर के। तो अश्वत्थामा ने ये जो सुझाव है इसे स्वीकृति दी। हालांकि अश्वत्थामा एक ब्रह्मचारी है और अश्वत्थामा ने केवल स्वीकृति दी, उसके कारण उसका ब्रह्मचर्य का पतन हो गया, इसलिए उसके अंदर कोई शक्ति नहीं रह गई। और अर्जुन जब वो इंद्रलोक गए थे अस्त्र शस्त्र वहां पर इकट्ठा करने के लिए, तो वहां पर वो कथा है जब उर्वशी आकर्षित हो गई अर्जुन से और उर्वशी अपने आप को प्रस्तुत कर रही है अर्जुन के समक्ष, और अर्जुन उर्वशी को कहते हैं हे माते मेरा दंडवत स्वीकार कीजिए। अर्जुन उर्वशी को माताजी कहकर पुकार रहे हैं। तो अर्जुन हालांकि गृहस्थ, परंतु अर्जुन के अंदर इतना संयम था, इंद्रिय संयम, कि उर्वशी के समक्ष भी अर्जुन जो थे वो उसे माता कहकर पुकार रहे थे। और यहां पर अश्वत्थामा एक ब्रह्मचारी परंतु दुर्योधन के सुझाव को स्वीकृति दे रहा है। इसीलिए अर्जुन हालांकि गृहस्थ होने के बावजूद अर्जुन ही योग्य पात्र थे, एक तो भगवत गीता श्रवण करने के लिए, और जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया तो उन्हीं के अंदर शक्ति थी उस ब्रह्मास्त्र को फिर से वापस लेने के लिए। और उदाहरण एक दिया गया है श्रीमद् भागवत में, दुर्वास मुनि और अम्बरीश महाराज। दुर्वास मुनि जो बहुत प्रख्यात विख्यात सन्यासी योगी, और अम्बरीश महाराज वो एक गृहस्थ, उनकी पटरानियां और उनके इतने सारे पुत्र और पैसा ऐश्वर्य राजकारण ये सब के अंदर रहते हुए अम्बरीश महाराज, तो श्रीमद् भागवत में कथा है कि अम्बरीश महाराज ने जब वो व्रत लिया, उपवास किया, और वो उपवास किस लिए किया, प्रजा के लिए, प्रजा के उद्धार के लिए उपवास किया उन्होंने भगवान को प्रसन्न करते हुए। और जब समय आया उपवास तोड़ने का तो दुर्वास मुनि आ गए। दुर्वास मुनि कई बार ऐसे समय पर आया करते थे जब ठीक नहीं होता था, नहीं आना चाहिए था उनको। वो द्रौपदी ने जब खा लिया था उसके पश्चात आए दुर्वास मुनि, हालांकि दुर्योधन ने भेजा था, अकेले नहीं 60,000 शिष्यों को लेकर, वो बाद में कथा हुई, पहले अम्बरीश महाराज के साथ हुई ये कथा। तो दुर्वास मुनि आए और उन्होंने स्नान के लिए वो नदी में, और कहां पर गए वो, जमुना में स्नान करने गए वो। कार्तिक का मास था, कार्तिक के महीने में, कार्तिक के पुण्य शुद्ध महीने में जमुना में स्नान करने दुर्वास मुनि गए। और यहां पर अम्बरीश महाराज, वो पारण का समय बीता जा रहा था, तो अम्बरीश महाराज ने अपने मंत्रियों से, ऋषि मुनियों से पूछा कि भाई ये जो मैंने उपवास किया है कैसे इसको सिद्ध किया जाए, अब दुर्वास मुनि आए नहीं है, उनसे पहले मैं कैसे कुछ खाऊं, कैसे पारण मैं करूं इसका। तो उन्होंने कहा कि पानी पी लीजिए, पानी पीने से आपका उपवास भी रहेगा और उपवास टूट भी जाएगा, दोनों एक साथ हो जाएगा, क्योंकि आपने कुछ अन्न नहीं खाया है तो उपवास टूटेगा भी नहीं, और पानी पी लिया है तो उसके कारण ये जो मुहूर्त है उस समय आप उसका पारण भी कर पाएंगे। तो दुर्वास मुनि वहां पर क्रोधित हो गए, अपने सिद्धि से उसने पता लग गया कि यहां पर अम्बरीश महाराज मुझसे पहले पानी पी लिए। देखिए पहले का जो संस्कार थे, जो संस्कृति थी किस प्रकार की थी, कि जब अतिथि आया है तो अतिथि को पहले देना चाहिए, अतिथि देवो भव। जैसे हम बता रहे थे कि आजकल तो ये सब कुछ अतिथि देवो भव, पहले घरों के सामने ऐसे लिखा जाता था अतिथि देवो भव। और फिर धीरे धीरे जब वो सतयुग में अतिथि देवो भव लिखा जाता था, धीरे धीरे जैसे और युग आते गए तो वो अतिथि देवो भव के बजाय फिर जस लिखा गया सुस्वागतम, कि आप कोई देव वगैरह तो नहीं होंगे बट स्वागत है आपका, सुस्वागत है आपका। और फिर और आगे के युगों में वो सुस्वागतम भी निकल गया और केवल स्वागतम, केवल स्वागत है थोड़े समय के लिए और उसके बाद में जाना फिर, और फिर वो स्वागत भी हट गया केवल शुभ लाभ। यदि आप शुभ हैं और यदि हमारे लिए कुछ लाभान्वित करने वाले हैं तो आइए। और आजकल क्या देखा जाता है, घरों के सामने लिखा जाता है कुत्तों से सावधान। तो कहां अतिथि देवो भव और आजकल लिखा जाता है कुत्तों से सावधान, और बड़े बड़े कुत्ते बाहर रखे जाते हैं कि यदि हमारे घर की तरफ देखो भी तो इसे सिखाया गया है ये करेगा आपका स्वागत। ये स्थिति है कलयुग की। तो यहां पर देखिए अम्बरीश महाराज, वो उन्होंने जो कुछ उनको आदेश मिला उस हिसाब से, और दुर्वास मुनि आग बबूला हो गए और वहां पर आकर वो चिल्लाने लगे अम्बरीश महाराज के सामने, और एक केश अपना निकाला और उसे फेंकते हुए एक ऐसा राक्षस पैदा किया और उसे आदेश दिया कि खत्म कर दो इस अम्बरीश को, कोई इसे संस्कार नहीं, कोई इसे पता नहीं कि कैसे एक सन्यासी, एक विरक्त को उसका आतिथ्य किया जाता है। और अम्बरीश महाराज ऐसा नहीं कि वो चिल्लाने लगे और अपनी सेना को बुला लिए कि इसको पहले खत्म करो, एक तो बिना बुलाए आ गए और उसके पश्चात इतना सब कुछ राक्षस पैदा कर रहे हैं मारने के लिए। अम्बरीश महाराज हाथ जोड़कर वो क्षमा मांग रहे हैं दुर्वास मुनि से, देखिए। और जैसे ही वो राक्षस पैदा हुआ उस अग्नि से, तो जो भगवान का सुदर्शन चक्र, भगवान का सुदर्शन चक्र उसने सबसे पहले उस राक्षस का वध किया। और ये जो सुदर्शन चक्र था, भागवत में लिखा गया है कि भगवान ने अम्बरीश महाराज को भेंट के रूप में दे दिया था, क्योंकि भगवान ने देखा कि ये जो मेरा भक्त है अम्बरीश, ये अपने विषय में इतना निस्वार्थ है कि अपने विषय में बिल्कुल सोचता नहीं, दूसरों के विषय में ही सोचता रहता है। तो इसलिए अम्बरीश की रक्षा करने के लिए सुदर्शन को भेज दिया कि वहां पर रहो अम्बरीश के साथ। भगवान ने छोड़ दिया अपना सुदर्शन और वो सुदर्शन ऐसा नहीं कि अमरीश महाराज जानते थे कि सुदर्शन है, तो सुदर्शन को भी नहीं बुलाया। ऐसा नहीं कि जब वो राक्षस पैदा हुआ तो सुदर्शन को थोड़ा संकेत दिया कि चलो शुरू करो। अमरीश महाराज ने सुदर्शन को भी नहीं बुलाया, अपने आप भगवान का आदेश था सुदर्शन को, जो जब भी अमरीश महाराज के ऊपर कोई विपत्ति आए सामने आकर रक्षा करो। तो सुदर्शन ने सबसे पहले वो राक्षस की हत्या की और उसके पश्चात दुर्वास मुनि के पीछे। तब दुर्वास मुनि को लगा कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तो फिर हम जानते हैं कथा, दुर्वास मुनि भागते हुए ब्रह्मलोक शिवलोक वैकुंठ तक पहुंचे। तो उस प्रसंग में कहा गया है कि जो सुदर्शन है उसमें इतना तेज है, जैसे सूर्य जब उगता है कितना तेज होता है सूर्य के अंदर, उससे कई गुना ज्यादा तेज सुदर्शन के अंदर है। तो सुदर्शन की तुलना सूर्य से की गई है कि जैसे अंधेरे में दिखाई नहीं देता कि कौन कहां पर है, कौन चोर है कौन पुलिस है, समझ में नहीं आता अंधेरे में, दोनों टॉर्च लेकर घूमते रहते हैं, परंतु जब सूर्य उगता है तो समझ में आ जाता है कि कौन क्या है, कौन कहां पर है, सही क्या है गलत क्या है। तो सुदर्शन की तुलना ज्ञान से की गई है और सूर्य से की गई है कि जैसे जब व्यक्ति अज्ञान में रहता है तो उसे समझ में नहीं आता कि क्या सही है क्या गलत है। ओम अज्ञान तिमिरान धस्य ज्ञानांजन शलाखया चक्षुर उन मिलितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। क्या कहा गया है कि हम हर समय अज्ञान में रहते हैं और ये जो भगवान का भगवत ज्ञान है इसकी तुलना एक सूर्य से की गई है, इसकी तुलना ऐसी रोशनी से की गई है जो हमारे चक्षुर उन्मिलितम हमारे आंखों को खोल दे। आंखों को खोलने वाला ज्ञान है। कई बार ये ज्ञान जब शुरू होता है तो आंखें बंद होना शुरू होती है। चक्षुर उन्मिलितम ये ना लेकिन हमारी कलयुग में स्थिति ऐसी है कि ये जो ज्ञान जो हमारे आंखें खोलने वाली वाला ज्ञान है, ये ज्ञान जब शुरू होता है तो आंखें बंद करना शुरू करते हैं। तो सुदर्शन की तुलना उस ज्ञान से की गई है, जब उस ज्ञान को हम जीवन में अपनाते हैं तो सही क्या है गलत क्या है वो सब का पर्दाफाश होता है। तो यहां पर सुदर्शन ने पर्दाफाश किया कि कौन असली सन्यासी है, अम्बरीश कि दुर्वास। तो सुदर्शन जब आए तो सुदर्शन के सामने पता लग गया कि वास्तविक विरक्त कौन है और वो है अम्बरीश महाराज। तो इसलिए यहां पर चैतन्य महाप्रभु वो अब सर्वभौम भट्टाचार्य से आज्ञा ले रहे हैं सारे संसार को यह दिखाने के लिए कि यदि कोई व्यक्ति गृहस्थ भी क्यों ना हो, यदि कोई व्यक्ति किसी सरकारी कार्य में क्यों ना लगा हो, यदि कोई व्यक्ति का परिवार बच्चे इत्यादि क्यों ना हो, परंतु यदि वो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण का भक्त है तो वो व्यक्ति गुरु है, वो व्यक्ति शरणागत होने योग्य है। ये यहां पर वो दिखा रहे हैं। और अब सार्वभौम भट्टाचार्य को जब अब आज्ञा मांगी है तो अब चैतन्य महाप्रभु अब जब निकलने ही वाले हैं तो सार्वभौम भट्टाचार्य की अब क्या प्रतिक्रिया होती है, क्या सार्वभौम भट्टाचार्य के अंदर पाया जाता है, इसकी चर्चा हम करेंगे कल शाम को। तो आप सबसे अनुरोध है कि आप सब हो सके तो शाम को भी आइए, और शाम को और कल से हर दिन शाम को हम श्री गौर कथामृत का पान करेंगे। और आज मैं यहां पर थोड़ा जल्दी इसलिए खत्म कर रहा हूं कि बहुत एक विशेष आपके लिए कुछ प्रयोजन किया है हमने, और वो है एक छोटी सी नाटिका जो हमारे भक्त आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, ताकि यदि किसी की आंखें बंद हो रही हो तो आंखें खोलकर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला को दर्शाते हुए ये एक छोटी सी लघु नाटिका। तो श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्रील प्रभुपाद की, इताई गौर प्रेमानंदी।